जो जितना ही पवित्र जीवन धारण करेगा उतना ही ज्ञान बुद्धि में स्वतः ही टपकता रहेगा। बाप से मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी।
वो तीन सूत्रों के बारे में क्लियर समझाए अभी जो बताया
गया। ब्रह्मा का ज्ञान सूत्र क्या है वो नहीं पता है?
पता है, थोड़ा क्लियर।
और विष्णु का ज्ञान सूत्र पालना का क्या है वो नहीं पता है? और शंकर का विनाश का ज्ञान सूत्र क्या है वो नहीं पता है?
पता है।
अभी ब्राह्मणों का दूसरा जन्म हो गया है या होने वाला है? बेसिक नॉलेज में तो हद की तरह उठा लिया, एक लौकिक जन्म और एक ज्ञान में आने का जन्म, यही अर्थ लगाया ना। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में इसका दूसरा अर्थ है, द्विजन्मा ब्राह्मण। एक जन्म है बेसिक नॉलेज में और एक है एडवांस ज्ञान में, एक है अधूरा बेसिक जन्म और एक है संपूर्ण बेसिक जन्म, एक है अधूरा एडवांस ज्ञान। अधूरा कब तक है? जब तक अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, बाप के ऊपर अनिश्चय आता है तब तक कैसा एडवांस ज्ञान है? अधूरा एडवांस ज्ञान। जब पाप के ऊपर पक्का निश्चय बैठ जाए तब कहेंगे संपूर्ण एडवांस ज्ञान। द्विजन्मा ब्राह्मण
जो भी मुख्य धर्म है उनके धर्म पिताएं प्रवेश करने वाले हैं, यहाँ प्रजा पिता तो प्रवेश करने वाले
हैं।
प्रजा पिता तो धर्म पिता प्रवेश करने वाले हैं।
हाँ?
जो भी मुख्य धर्म है ना भगवान,
हाँ?
उसमें प्रवेश करने वाले धर्म पिता बनते हैं।
हाँ?
यहाँ
हाँ?
जो प्रजापिता है प्रवेश करने वाले आत्मा
है, माने प्रजापिता वाली आत्मा वो ब्रह्मा आधार मुहूर्त में बैल के ऊपर कभी छलांग लगा के सवारी नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी?
करेगी। सुबह को सवेरे 3-4 बजे उठो, उठकर के स्नान आदि कर यही ख्याल रखना चाहिए कि हम अशरीर है और हम आत्मा अपने बाप को याद करते हैं, बाप को याद करने से विकल्प विनाश होता है।
तो
3 बजे उठो, स्नान करना जरूरी है।
स्नान करने के तो दो कारण बताए, कोई प्रकार की गंदगी होती है शरीर में तो स्थूल स्नान करना, लैट्रिन जाते हैं तो छिटके पड़ेंगे, स्नान करना है। यदा कदा माया पकड़ लेती है, 5वीं बार से नीचे गिराती है, विकारों में गिर जाते हैं तो भी स्नान करना। बाकी न विकारों में माया ने गिराया न शरीर अपवित्र हुआ टॉयलेट में जाके, तो जरूरी है, नहीं करेंगे हाथ मुंह धोकर के बैठ जाएंगे याद करने के लिए तो याद नहीं आएगी।
मुरली ने बताया गया लैट्रिन में भी याद कर सकते हो।
और फिर क्या है? मुरारजी देसाई को अपनी बात याद आ रही थी, अपने मूत्र का स्वपान करेंगे तो भी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, वो अपना अनुभव बता रहा
है। अच्छी बात है,
अच्छी बात है।
हवा सिख धर्म में सर के बाल लंबे होते
हैं,
सिख धर्म में उनके सर के बाल जो है ना लंबे लंबे होते हैं, तो फिर उनको जाम्बवंती और जाम्बवंश का भी बोला गया है, वो भी सिख धर्म के अंदर ही आते हैं, वो दोनों भी जाम्बवंती और जाम्बवंश, वो दोनों
जामवंत और जामवंती, हाँ
वो दोनों भी सिख धर्म के अंदर ही आते हैं।
हाँ
तो फिर उनके लिए ये भी कहा गया है एक न्यारी या सादा ब्रह्मचारी, तो फिर वो लोग तो ज्यादा क्रांतिकारी भी कहा है जिनके बाल लंबे होते हैं।
हाँ तो फिर सिर्फ शरीर के बाल लंबे नहीं होते हैं, सिर के बाल लंबे नहीं, सिर के बाल लंबे तो लक्ष्मी नारायण के भी होते हैं, वो कोई भिखारी बात नहीं है।
बाबा पुरुषों में की बात है, पुरुषों में भी वही है।
नहीं, उनके सारे शरीर में बाल होते हैं रीछ की तरह। राम ने बंदरों की सेना ली, बंदरों की सेना के बीच में जामवंत भी था। क्या अंतर है बंदरों में जामवंत में? उसके सारे शरीर पर बाल है, इसलिए शास्त्रों में जहां जामवंत और आठ पटरानियों में जामवंती का नाम आया है वो सिख धर्म से कनेक्टेड है, उनके रोम रोम में विकार भरे हुए हैं, बड़े बड़े बाल भरे हुए हैं, वो भिखारी तो बनते हैं, लेकिन एक नियम उन्होंने पक्का बांधा हुआ है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भिखारी होने के कारण ज्यादा से ज्यादा निर्विकारी भी वही बनते हैं जब ज्ञान उठाते हैं। और हिंदुओं ने स्वतंत्रता के लिए उतने संग्राम में सहयोग नहीं दिया है, इतना ज्यादा अर्पण नहीं किया है तन मन धन जितना सिखों ने बलिदान किए। यहां भी ऐसे ही है, ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में जब वो पंजाब के बड़े बड़े बालों वाले सिख निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी।
बाबा एक टीवी में बोला गया है जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, तो फिर एक विनय की वार्तालाप के कहा है सत्य बामा के बारे में, तो सत्य बामा का पाठ गंगा को दिया गया, मगर गंगा तो सन्यासी है ना,
अरे
और उन्होंने तो अभी तक उनका मानवता सभा भी छोड़ा नहीं
है,
नीचे वाले मानवता सभा अभी भी छोड़ा नहीं है,
नीचे वाले मानवता सभा
हाँ अभी भी छोड़ के आई नहीं, तो फिर उनको सत्य बामा का पाठ
नीचे वाले मानवता सभा छोड़ के आए
हैं, नहीं आया ना
नहीं आई है। तो अभी किसने कहा कि बड़े बड़े सन्यासी निकल पड़े? अभी तुम्हारी जीत हो गई क्या? इसीलिए जीत नहीं हो गई, जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे और उन सन्यासियों की अम्मा निकलेगी, जिस अम्मा के किनारे वो सन्यासी चौकड़ी मारकर बैठे रहते हैं, गंगा के किनारे चौकड़ी लगा के सन्यासी बैठते हैं ना मेंढकों की तरह, तो वो गंगा जब निकलेगी तो सारे सन्यासी उसके पीछे पीछे फॉलो करेंगे, अभी निकली नहीं है, अंत में निकली है ज्ञान गंगा है।
और बाबा सत्य बाबा के बारे में तो बोला जाता है उन्होंने तहमान जान सब समझ, मतलब जब गंगा
बिना सब कुछ समर्पित किए 100% ईश्वरीय सेवा कोई कर सकता है क्या?
नहीं कर सकता।
तो 100% ईश्वरीय सेवा की है तो सर के ऊपर सवार हुई है अष्टदेवों की तरह, हाथ मणकों की तरह। अगर तन मन धन समय संपर्क संबंधियों से पूरी सेवा न की होती गंगा ने
आपके ऊपर नहीं
तो वो क्या शंकर के ऊपर सर पर सवार नहीं होती। और
बाबा लिंग में 63 जन्मों की रेल घूमती है स्वप्न के रूप में
नींद में
स्वप्न के रूप में 63 जन्मों की रेल घूमती रहती है
नींद में
मतलब स्वप्न के रूप में
स्वप्न और संकल्पों के रूप में हमारी रिहर्सल और शूटिंग चलती रहती है।
कोई कोई ना स्वप्न में बोलने भी लगता है तो लेकिन उनकी भाषा तो बदलती नहीं है उनकी भाषा तो बदलती नहीं है तो फिर वो उनकी भाषा जो है जैसे मराठा है उनका मराठी है हिंदी और हिंदी बोलता रहता है मतलब 63 जन्मों में तो एक ही भाषा तो होती नहीं है
नहीं
तो वो भाषा बोली में बोलती है ना
यंत्र है यंत्र है जैसे आजकल कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाला गया है कि वो अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में ही कन्वर्ट करेगा दूसरी भाषा में कन्वर्ट नहीं करेगा तो सब भाषाएं तुम कैसे निकाल लो। ये तन जो है वो एक प्रकार का यंत्र है इस यंत्र में जैसा सॉफ्टवेयर भरा हुआ है वैसा ही बोलेगा ना
बाबा को बाबा कोई लौकिक दुनिया में कोई शहीद हो जाता है तो कुत्तों को पता चल जाता है वो रोने लग पड़ती है मतलब इसका मतलब कुत्तों को रूह दिखती है क्या
रूह नहीं दिखती है वो शरीर का गंध सूंघता है पांच तत्वों की जो स्पेशल गंध निकलती है हरेक में अलग अलग अपने प्रकार की उस गंध को सूंघता है उस गंध के आधार पर सूंघते 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 कहां से वो पसार हुआ है वो मुर्दे को ढूंढ लेता है
मतलब वो रोने के कारण
है
वो रोता
अरे ये बात अलग जो अभी पूछी रोने की बात अलग है
कुत्ता रोता रहता ना
कुत्ते जो है वो रात में रोते हैं हमेशा नहीं रोते कभी कभी रोते हैं कभी नहीं रोते हैं और इकट्ठे होकर के भी रोते हैं
इसीलिए रोते हैं बाबा जिससे
शरीर टूट जाता है तो वो रोते
हैं हाँ उनको अनुभव होता है और मरते तो रहते ही है एक शहर ऐसा कौन सा है जिसमें लोग मरते न रहते हो कोई ऐसा शहर है जिसमें वो लोग मरते न हो कोई टाउन ऐसा है
नहीं है
मरते ही रहते तो हर जगह कुत्ते तो रोते ही रहते हैं अब कुत्तों को तो रोना ही है क्योंकि वो अपना कुत्तपन छोड़ते नहीं है इसलिए अज्ञान की रात में उनको रोना ही रोना है मुरली में बोला ये इस्लामी पहले मरेंगे तो ज्ञान में आकर के मरेंगे या अज्ञान के आधार पर मरेंगे है
अज्ञान के आधार पर
हाँ रोना तभी होता है जब आदमी अज्ञानी होता है
बाबा एक भाई का प्रश्न है कारण अकारण वो संगठन से बाहर है कारण अकारण वो संगठन से बाहर है
कौन
कोई भाई एक भाई है कारण या कारण के संगठन से बाहर है, बाबा को पत्र लिखते हैं और उसका समाधान आते हैं, पर बाबा का मुरली बोलते हैं पत्र का सारा समाधान मुरली रूप में आ जाता है। तो फिर हमको तो नया चीज रुकता ही नहीं, हमको कैसे पता चलेगा हमारा समाधान क्या है? तो फिर उनका पूछना ही है,
बाप बच्चों से बात करते हैं या सबसे बात करते हैं?
बच्चों से बात।
तो बच्चे जो भर्ती करेंगे बाप के घर में जाके जन्म लेंगे उनसे ही बात करेंगे, जो मर गए उनसे बात कैसे करेंगे? और
जब पत्र तो बाबा के पास पहुंच जाती है ना, होता
अभी
लोगों का पत्र बाबा के पास पहुंच जाती है, तो फिर उसका समाधान
बच्चों का करेंगे या जो बच्चे हैं ही नहीं उनका करेंगे?
जब बाबा पहले वो बच्चे आ चुके हैं,
आ चुके हैं फिर मर चुके हैं, ऐसे ढेर के ढेर बच्चे हैं, सब सूर्यवंशी बन जाएंगे नहीं? सब 84 जन्म लेंगे क्या? ढेर के ढेर मरने वाले हैं, मौत का बाजार लगेगा।
और चल लो
मरने का मतलब है,
मरना दो तरह से होता है, एक लौकिक जीवन में मरना होता है, एक अलौकिक जीवन में मरना होता है। अलौकिक जीवन का मरना बाप सिखाते हैं, और अलौकिक जीवन में भी दो प्रकार से मरना होता है, एक मरने का काम, मारने का काम माया करती कराती है, और एक मरने का काम बाप करण करावनहार है। जो निश्चय बुद्धि होकर के मरते हैं जीते जी दे अभिमान से, वो फर्स्ट क्लास मौत है, और माया जो मौत कराती है वो तो फोर्थ क्लास भी नहीं, उससे भी नीची मौत है, अनिश्चय बुद्धि बनाई देती है। वो बाप की ग्लानी करेगा कि बाप की महिमा करेगा? है? है? ऐसे हो ही नहीं सकता। जो बाप को पहचाने और बाप को भूल जाए, पहचानेगा तो दुनिया को कहेगा बाप आया हुआ है, और जब अनिश्चय बुद्धि बन गया तो किसी को नहीं कहेगा बाप, आप तो लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे लोग? ये ग्लानी करने वाला है या महिमा करने वाला है? ग्लानी करने वाला है।
बाबा एक वार्तालाप में कहा है भाई साहब,
है
भाई साहब कहा है, ये एक ही की आदि वाले स्वरूप की बात कहा है, भाई साहब,
भाई साहब,
भाई साहब, भाई साहब,
हाँ ये एबीसी आदि वाली स्वरूप की के लिए कहा गया बोला?
अरे पूरा बाकी तो बोलो, एक शब्द बोल दिया भाई साहब।
हाँ वही तो होती
है,
है? बोला गया बाबा वार्तालाप,
क्या बोला गया वार्तालाप में कोई वाक्य होगा ना?
वही भाई साहब बोला,
भाई साहब कोई वाक्य तो नहीं हुआ, ये तो एक शब्द हो गया।
एबीसी आदि वाली स्वरूप की स्वरूप के लिए कहा गया,
पूरा वाक्य तो बोलो जो कहा गया है, ये पूरा वाक्य नहीं है, एक शब्द है
बाबा। मेरी बात भाई साहब कहा है, जैसे रुद्र माता के सब है आपस में भाई भाई, ये यज्ञ के आदि वाली स्वरूप के लिए कहा है, तो फिर बाबा इसी अवसर के रिमिनेशन में कहा, जिन्होंने भाई साहेब कहा वो स्वधर्मी है, मतलब स्वदेशी है, जो आते ही बाबा बाबा बोले वो विदेशी है कहा, 664 वार्तालाप में कहा, तो फिर भाई साहब ही कहना चाहिए या बाबा बोले?
बाबा कहना चाहिए, रुद्रमाला के मन के भाई भाई है ना, तो भाई साहब कहना।
बाबा कहेंगे तो ग्रैंडफादर का वर्षा मिलेगा, भाई कहेंगे तो भाई से वर्षा नहीं मिले। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब ऐसा बात धर्मराज होता है अच्छा धर्म तुम्हें तो अच्छा वर्षा दे देगा धर्मराज की पिटाई मिलेगी।
बाबा उद्घाटन आपने कहा है जो भाई साहब कहा वो स्वदेशी है कहा जो मामा बाबा बोला वो विदेशी है कहा
या बैठे वो वालों किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं पढ़ी होगी ना सुनी होगी दूसरे तरीके से तुम्हें समझ लिया
वही बाबा मैं समझते
जो भी है वो अच्छे माँ बाप के सामने लाओ ना। और
दुनिया
में जोड़ी जो बनती है जितनी भी जोड़ियाँ बनती है कन्या के साथ ही जोड़ियाँ बनती है कि पहले से कोई माता होती है उसके साथ जोड़ियाँ बनती है। कोई माता के साथ जोड़ी बनाना अच्छा समझता है तो माता को अजूबा लगता है।
అన్నయ్య గారు ఎవరు అడగరు కదా కన్యాని
చూస్తా
పతి పత్ని జ్ఞాన మే చలే బేసిక్ మే భీ చలే హో హిందీ అచ్చీ జానతే హో ఆర్ భట్టీ కీ హుయీ హో ఆర్ బేసిక్ జ్ఞాన అడ్వాన్స్ జ్ఞాన సునాయ సక్తే హో तो गीता पाठशाला खोले अच्छी बात है और एक दूसरे को सर्टिफिकेट दे कि पवित्र रहते हैं।
गीता पाठशाला में क्लास करते हैं या प्रातकाल या सायंकाल वो दोनों युगल जोड़ा मौजूद होना चाहिए
है
दोनों पति पत्नी दोनों रहना चाहिए क्लास
वो जरूरी नहीं
मतलब
नबी रहते हैं दूसरी माता मौजूद है उस माताओं की मौजूदगी में क्लास चल सकता है। पति कमाई नहीं करेगा नौकरी नहीं करेगा धंधा नहीं करेगा बिजनेस नहीं करेगा तो फिर बिजनेस करेगा चार दिन के लिए आठ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा।
लक्ष्मी है लक्ष्य नारायण नारायण बनने का है बाबा लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है।
हाँ जीवन का लक्ष्य है कि हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है घर परिवार का वातावरण लक्ष्मी नारायण के मंत्र जैसा बनाना है। ऐसे नहीं कि रहते हैं इस घर में और अलग एक कमरा ले लिया या मंदिर और धर्मशाला में कमरा ले लिया वहां गीता पाठशाला में खोल दी और क्लास बना के चले आए वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं हुआ।
जो निश्चय गति होते हैं सबको बता दे कि आप आया हो तो जो कोई भी संदेश नहीं देता है वो निश्चय बुद्धि
उसके कर्मों से निश्चय बुद्धि बनते उसके कर्मों से साबित होगा कि पापा आया हुआ है कोई मुख से ही थोड़े ही संदेश दिया जाता है। और
प्रकृति जी बनने का क्या पुरस्कार करना है प्रकृति जी
प्रकृति जी बनने के लिए कौन सा पुरस्कार करना है
प्रकृति
प्रकृति
जी से बनने के लिए कौन सा पुरस्कार करना चाहिए प्रकृति को जीतना है पांच तत्वों को जीतना है पांच तत्वों को जीतना माना अपनी कर्म इंद्रियों को जीतना और कर्म इंद्रियों के ऊपर जीत पानी है तो मन को कंट्रोल करना पड़े, क्योंकि जो भी इंद्रियां हैं 10 उनका मुखिया मन है। मन को जितना एकाग्र करते जाएंगे उतना इंद्रियों पर जीत होती जाएगी और प्रकृति जीत भी बनती जाएगी। ये मूल मंत्र है, अपन को आत्मा समझ पाप को याद करो, प्रकृति जीत भी बनते हैं और माया जीत भी बनते हैं। दुनिया में और कोई तरीका किसी के पास नहीं है प्रकृति जीत और माया जीत बनने का। आने वाली दुनिया की इच्छा जो हम करेंगे वो देह से कनेक्टेड इच्छा है या आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है? आत्मा से कनेक्टेड इच्छा है, ये तो अच्छी बात हुई। जो गुरु लोग सिखाते हैं वो गुरुओं की पढ़ाई जो है, मनुष्यों की पढ़ाई जो है, वकील बनावेंगे, ये बनावेंगे, वो बनावेंगे, वो इस जन्म की पढ़ाई से कनेक्टेड है, देह की पढ़ाई से कनेक्टेड है, एक जन्म से कनेक्टेड है, अल्पकाल की पढ़ाई है, वो अविनाशी पढ़ाई नहीं है, उसका लक्ष्य भी अविनाशी नहीं है।
गुलाब का फूल और गुलाब का फूल, इसमें गुलाब का फूल 2-3 दिन के अंदर मुरझा जाता
है जी,
लेकिन कमल का फूल बहुत समय तक रहता
है। हाँ,
तो कमल का फूल का क्या पुरुषार्थ?
कमल का फूल का रुद्रमाला का पुरुषार्थ है, लंबे समय तक पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ जो है, जो बाप की पढ़ाई का सच्चा पुरुषार्थ है वो कमल का फूल करता है या गुलाब का फूल करता है? है कमल का फूल करता है। कमल का फूल 1 महीने तक ज्यों का त्यों रखा रहेगा, गुलाब का फूल पुरुषार्थ ही लंबे समय का नहीं करता। बाप तो कहते हैं लंबे समय की जो प्रारब्ध है वो अच्छी काम में आती है, लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए।
अंत में बाबा 1881 में भाजप ने सरकार स्थापन किया
है,
कमल फूल लेके सिंबल
है,
कमल का वो सिंबल है ना भाजप का, बीजेपी का, बीजेपी का जो सिंबल है कमल का है ना।
हाँ जी,
81 में स्थापना हो गई उसके भाजप की, लेकर अभी तक पुरुषार्थ कर दी, लेकिन उनको गवर्नमेंट तक क्यों नहीं आ रहा?
रुद्रवाला को पुरुषार्थ का फल मिल गया क्या? ये जानता पार्टी है, अज्ञानता पार्टी है? ये भी जानता पार्टी है, जानता पार्टी तो है लेकिन पुरुषार्थ अभी पूरा परिपक्व स्टेज का नहीं हुआ है। उसकी भी शुरुआत करने वाला जयप्रकाश नारायण था, क्या जयप्रकाश नारायण, और इसकी भी शुरुआत करने वाला बेहद का जयप्रकाश नारायण था, उस जनता पार्टी की शुरुआत करने वाला भी गुजरात से निकला था। कहां से निकला था? गुजरात से। इसे बेहद का पुरुषार्थ करने वाली जनता पार्टी का जो हेड है वो कहां से निकलता है? गुजरात से निकलता है। उस समय उसका भी सहयोगी कृष्ण मुरारी देसाई था, था कि नहीं? हाँ, इसका भी सहयोगी कौन है विशेष? है कृष्ण मुरारी देसाई, वो भी अपना मूत पीता था। कौन? कृष्ण मुरारी देसाई, वो अभी भी है। और ज्ञान किसकी बुद्धि में बैठा है? कृष्ण बच्चे की बुद्धि में बैठा है कि राम की बुद्धि में बैठा है? राम की बुद्धि में ज्ञान बैठता है, कृष्ण तो बच्चा है, मिट्टी खाता है।
बाबा जैसे कहते हैं कि आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो माउंट आबू के पहाड़ के नीचे कौन सा ऊंट आएगा?
ऊंट कौन से देश का पक्षी है? कहते हैं ऊंट पक्षी, चलता है तेज, तो ऐसे लगता है कि जैसे पक्षी उड़ रहा है। ऊंट पक्षी कौन से धर्म खंड में ज्यादा होता है? हैं? इस्लाम धर्म खंड में। पहले पहाड़ के ऊपर रहना पसंद करते थे, अब कहां उतर पड़े? हैं? आबू रोड में। वो पहाड़ के नीचे आ गया कि ऊपर है? हैं? नीचे आ गया और नीचे आ जाएगा।
तो इस्लाम धर्म के बीच को कहेंगे?
हैं?
इस्लाम धर्म का जो बीज है,
हाँ,
उसको कह सकते हैं क्या?
हाँ, वो भी पहाड़ के नीचे है,
चैतन्य पहाड़ के नीचे।
हाँ, चैतन्य पहाड़ के नीचे है। बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? और
2036 में जो आखिरी विनाश होगा तब माउंट आबू पर्वत भी नहीं रहेगा, ऐसा बोला है। आखिरी विनाश में माउंट आबू का पर्वत भी नहीं रहेगा,
ठीक है।
तो शांति धाम तो वही बनेगा ना बाबा?
शांति धाम उससे पहले बनेगा कि बाद में बनेगा?
उससे पहले बनेगा।
पहले बनेगा।
और ये भी बोला है कि पहले आत्माओं की कंचन काया बनने का समय 150 साल तक है।
हाँ,
तो वो आत्माएं वही रहेंगी क्या?
अरे संगम युग पुरुषार्थ करने का टाइम कब तक है?
36
तक ही टाइम है, उसके बाद पुरुषार्थ थोड़े ही है। बर्फ का टाइम जो है वो बाद का है कि पहले का है? एटम बम फटने से पहले दुनिया में ठंड ही ठंड, शांति ही शांति हो जाएगी या बाद में होगी? है एटम बमों की जब गर्मी चारों तरफ फैलेगी सागर में, तो सारा पानी भाप बनकर के ऊपर उड़ जाएगा, और जोर से लगातार कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होने के कारण सारी पृथ्वी पर मौसम कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। वो टाइम होगा 36 का। और
उसको भी पहाड़ नहीं रहेगा क्या बाबा? माउंट आबू पहाड़?
अरे एक एक तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका एक एक कण जहां से साइकिल उसने शुरू किया है वहीं पहुंचना है, तो कुछ रह जाएगा क्या? नहीं। ये पृथ्वी के अंदर भी गहरे हिस्से में जब ज्वालामुखी फूटता है तो गहरे हिस्से का जो आग से ये जैसे लोहा पिघल जाता है तो क्या हो जाता है? गरम गरम लावा बन जाता है। ऐसे पृथ्वी के अंदर लावा भरा हुआ है, सारी पृथ्वी पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, सारा अंदर का लावा निकल करके बाहर आएगा, कहीं रहने योग्य जगह रह जाएगी क्या? सिर्फ भारत में ऐसा स्थान रहेगा जो बर्फ ही बर्फ से आच्छादित होगा। जहां पुरुषार्थी आत्माएं बर्फ में दबेंगी,
तब भारत ही रहेगा,
नॉर्थ इंडिया ही होगा। दुनिया में कोई और हिस्सा ऐसा है जहां के लोग बाप की भाषा को ज्यादा समझते हो? है? भले अभी दक्षिण भारत से ज्ञान में ज्यादा निकल रहे हैं, लेकिन ज्ञान को बाप की भाषा को उतना समझ रहे हैं क्या? गहराई से नहीं समझ रहे।
माउंट अमेरिका
है
जो बहुत देर का टाइम नहीं है। माउंट मेरी
क्रिश्चियन धर्म में माउंट मैरी जो है ना उसका गायन क्यों है?
क्रिश्चियन धर्म को गायन नहीं होता है,
क्रिश्चियन
मेरी मेरी
जोर से
ये आगे वाले उनको समझा नहीं आपने क्या बोला।
क्रिश्चियन धर्म में गौर मेरी का गायन होता है।
क्रिश्चियन धर्म में
गौर मेरी का गायन, माउंट मेरी का गायन,
माउंट मेरी
मेरी मेरी माउंट मेरी
माउंट मेरी
हाँ
उसका गायन क्यों होता है?
मेरी माने क्या होता है? हैं
जो तेरी नहीं होगी।
अरे सारी दुनिया की कौन है? नहीं, एक होता है मेरा और एक होता है मेरी। सारी दुनिया का मेरा है बाप और मेरी कौन है? हैं? अरे सारी दुनिया की माया है मेरी, वो तो मौसी है, माँ है। तो यहां मेरी कौन हुई वास्तव में? जगदम्बा हुई मेरी। जब सारी दुनिया पर शासन होगा, जो सिख लोगों में गायन है, क्या गायन है? राज करेगा खालसा। तो खालसा कहां रह करके राज करेगा? दिल्ली में जमुना के कंठे पर राज करेगा या और कहीं से राज करेगा?
नहीं,
रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? रुद्रमाला का मणका है तो कहां राज करेगा? अंत समय तक उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? है? अरे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंत समय तक जब पुरुषार्थ करना पड़ेगा तो कहां रह करके पुरुषार्थ करेगा? है? माउंट आबू, वही माउंट मेरी हो गई। अरे बेसिक नॉलेज में डूबी जा किया तो जिनको डूबी जा किया वो कहां राज करती थी? माउंट आबू में। बेसिक में जब माउंट आबू में राज करती है तो एडवांस में राज कहां से करेंगी? सारी दुनिया का माउंट आबू से, वो ही माउंट मेरी है। जो इस बात को पहचानते होंगे वो पहले माउंट मेरी में कदम बढ़ाते होंगे।
बाबा ने तो कहा है कि अभी पश्चिम से सूरज की किरणें दोबारा आ रही है।
हाँ क्यों नहीं,
सूरज आएगा तो माउंट मेरी लगेगी।
या सूर्यास्त का गायन है माउंट से तो सूर्योदय का गायन नहीं होगा क्या? सनसेट पॉइंट का गायन है या नहीं? माउंट आबू में सनसेट पॉइंट है या नहीं है? है? तो एडवांस पार्टी जब माउंट आबू पर पहुंचना शुरू करती है, जो गायन है सच्चाई सर पर चढ़ करके बोलेगी तो सत्य कहां से प्रत्यक्ष होगा? माउंट आबू से प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो वहां भक्ति मार्ग का जैसे सनसेट पॉइंट बना हुआ है उसी टाइम से सनराइज पॉइंट भी बनना शुरू हो जाता है।
बाबा सतयुग की गायें जैसे दूध देती है तो तंदुरुस्ती रहती है,
है?
बाबा ने कहा कि सतयुग में जो गाय है वो जो दूध देती है तो उसमें तंदुरुस्ती रहती है और अभी की गायें जो दूध देती है उसमें बीमारी फैलती है। तो ऐसे भी सोचे कि दूध दे ही नहीं
है,
दूध दे ही नहीं, ऐसे सोचने वाली भी गायें होती।
तो गाय किस काम की? वो तो बहेल हो गई। गायें भी दो तरह की होती हैं, एक दूध देने वाली और एक दूध न देने वाली। नहीं मालूम तुमको? मालूम करो, जो बहेल गायें होती है वो सांड के साथ इधर उधर घूमती रहती है चारों तरफ, किसी के बंधन में नहीं आती। और जो बंधन वाली गायें होती है वो खूंटे पे बंध करके रहती है, जो विदेशी गऊ है वो खूंटे पे एक खूंटे पे बंध के रहना पसंद करती है या उड़ती रहती है? उड़ती रहती है। भारत की गऊ की ये विशेषता है, जहां उन गऊ के लिए गौ सुरक्षा आंदोलन चला रहे हैं भक्त लोग, गलती सिर्फ ये किया है उन्होंने जानवर गऊ को समझ लिया, तो वो एक खूंटे पर बंधी रहने वाली जो गऊए हैं उनको अगर भोजन भिखारी दिया जाता है तो बीमार पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी? है बीमार पड़ती है। और निर्विकारी भोजन मिले तो बीमार होने का सवाल ही नहीं। ऐसी गऊओं को जब नई दुनिया मिलेगी, जो नई दुनिया का संगठन बनेगा वो सतयुग से बनना शुरू होगा या संगम युग से ही बनना शुरू होगा? संगम युग में ही वो भोजन बनना शुरू हो जाएगा। जिनको संकल्पों का भोजन, शुद्ध भोजन मिलेगा, अशुद्ध भोजन उनको नहीं मिलेगा, फिर बीमारियां भी नहीं रहेंगी। अभी विचार बढ़ रहा है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, या घट रहा है? इसलिए शास्त्रों में दिखाया है अलग अलग तरीके से। हिरण्याक्ष राक्षस सारी पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को कहां ले गया? पाताल लोक में ले गया, गड्ढे में ले गया। तो गड्ढे में अभी लिया जा रहा है यह स्वर्णिम संगम युग की शूटिंग है? कहां की शूटिंग है?
फाउंडेशन तो लगा है।
हाँ, फाउंडेशन नहीं लगा है, अभी जा रही है गड्ढे में। दिखाते हैं काशी नगरी छिटक जाती है क्या? गड्ढे में जाने से काशी नगरी बच गई, बाकी सब गड्ढे में जा रहे हैं। उस राक्षस का नाम रखा है सोने की आंख वाला राक्षस। अक्ष माने आंख, हिरण्य माने सोना। कैसी आंख है? सोने की आंख। जैसे कहते हैं सोने की जंजीर लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर होती है अलौकिक परिवार के अंदर और लोहे की जंजीर होती है बाहर के लौकिक संबंधी देह के। तो हिरण्याक्ष क्या करता है, कौन सी मोह की जंजीर में बांधता है? है सोने की मोह की जंजीर में बांधता है, लगाव लग जाते हैं देह के और गड्ढे में गिरते जाते हैं। पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते, लगातार पृथ्वी और पृथ्वीवासी गड्ढे में जा रहे हैं। भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा के पास जाओ वो भी कहते हैं टाइम आएगा, परिपक्व स्टेज आएगी तब होगा, पाप पकेगा तभी यह परिवर्तन होगा। इसलिए बाप को आना पड़ता है क्या काम करने के लिए? है नहीं आता समझ में क्या? अरे बच्चे नहीं पाप को घड़ा भर पाएंगे क्या? बच्चे कम ताकतवर हैं, इसलिए पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए कौन आया हुआ है? बाप आया हुआ है, ताकि जल्दी से पाप का घड़ा भर जाए और जो अंदर अंदर त्राहि त्राहि मच रही है क्या करें, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है, वो बात खत्म हो
जाएगी। हिरण्याक्ष में पावर कहां से आती
है?
हिरण्याक्ष राक्षस है ना,
हिरण्याक्ष में
इतनी पावर कहां से आती है?
असुरों में पावर कहां से आती है? आश्रम में पावर तपस्या से आती है, वो भी आत्मा समझने और आत्मा को याद करने की तपस्या ज्यादा कर लेते हैं। जो देवताएं होते हैं वो सुख के आदि होते हैं, उन्हें सुख चाहिए। जो राक्षस होते हैं वो भिखारी सुख के आदि तो होते हैं लेकिन तपस्या के बड़े मजबूत होते हैं, बैठ जाएंगे कड़क करके हठयोग में तो तपस्या पूरी करके मानेंगे।
तो इसलिए शंकर छलांग मार के भय को कंट्रोल में करता है, वो कहेंगे
छलांग मारना माने
ऊंची स्टेज में कंट्रोल करना,
ऊंची स्टेज नहीं, छलांग मारना माने हाई जंप लगाना। एक है पुरुषार्थ सोते सोते याद करना, लेटे लेटे याद करना। एक है पुरुषार्थ बैठ करके याद करना, थोड़ी ज्यादा अलर्टनेस हो गई। एक है खड़े हो जाना, जब क्लास में बैठे बैठे मुरली सुनते या याद में बैठे बैठे नींद आने लगती है तो क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं। उससे भी तीखा पुरुषार्थ है चलते फिरते याद करना, उससे भी तीखा पुरुषार्थ है पुरुषार्थ में दौड़ लगाना, उससे भी तीखा पुरुषार्थ है उड़ना, और उससे भी तीखा पुरुषार्थ है हाई जंप लगाना। और साल की हिस्ट्री मनुष्य के पास मौजूद है, उसमें दो युग हैं, द्वापर और कलयुग। और जो हिस्ट्री मौजूद नहीं है वो है सतयुग त्रेता, रामकृष्ण की दुनिया, वो भी 2500 साल। उसको दो हिस्सों में बांट दो तो 1250 वर्ष। और शास्त्रों में भी लिखा हुआ है एक एक युग की आयु 1250 वर्ष है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन मनुष्य गुरुओं ने उसको 365 से गुणा कर दिया कि देवताओं का एक दिन जो है 1000 वर्ष के बराबर होता है, ये गपोड़ा लगा दिया, ये सारा गड़बड़ हो गया। हाँ, लाखों लाखों बताते हैं ताकि हिसाब न बताना पड़े, बहुत लंबा लंबा बताएंगे तो कौन हिसाब पूछेगा, कितने जन्म हुए, कैसे कैसे हुए, सुखी रहे कितने जन्म, कितने जन्म दुखी रहे, आत्मा की हिस्ट्री कोई बता ही नहीं पाएगा, इतने लंबा लंबा करते हैं। और
बाबा सचिव में 9 जन्म होंगे तो एक एक आत्मा 9 जन्म लेंगे ना, अगर ऐसा है तो जो फर्स्ट लक्ष्मी नारायण है वो राधा कृष्ण का गद्दी देने के बाद, राधा कृष्ण को गद्दी देने के बाद जब शरीर छोड़ेंगे तो दोबारा उनको जन्म कौन देगा?
माना जो विश्व के मालिक बनने वाली लक्ष्मी नारायण है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनको सतयुग में जन्म कौन देगा? है तो सतयुग के पहले जन्म में जाकर के उनका पद नीचा हो जाएगा अंत में, या ऊंचाई बना रहेगा? है नीचा हो जाएगा, एकदम नीचा हो जाएगा या थोड़ा नीचा होगा? है कितना नीचा हो जाएगा? अरे 1 डिग्री नीचा होगा कि 16 डिग्री एकदम नीचे चले जाएंगे? 1 डिग्री नीचे होगा। सतयुग के आदि में जो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं वो तो ऊंचे के ऊंचा पद पावेंगी, राधा कृष्ण के बाद फिर सेकंड ग्रेड का नारायण कौन बनता है? हैं? ब्रह्मा बनते हैं। इस्लाम धर्म का। तो जैसे हाँ, जैसे राधा कृष्ण से जन्म लेंगे सेकंड नारायण इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले, तो फर्स्ट जो नारायण है सतयुग का वो नीचे गिर गया। ऐसे ही जो संगम युग में ऊंचे के ऊंचे पद पाने वाले हैं वो उनसे भी ज्यादा नीचे गिरेंगे। ऐसे गिरते 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 आखिरी जन्म में सतयुग में जाकर के राम वाली आत्मा टोटल साहूकार बन जाएगी। हिस्ट्री में भी तो ऐसे ही होता है, जब द्वापर युग शुरू होगा तो द्वापर के आदि में किस धर्म की राजाई चलती है? पृथ्वी के ऊपर द्वापर के आदि में किसका राज्य होता है? कौन से धर्म वालों का राज्य होता है? सूर्यवंशियों का राज्य होता है ना। राजा विक्रमादित्य राजा होगा, ब्रह्मा वाली आत्मा राजा विक्रमादित्य बनेगी। राजाएं जितने होते हैं वो सब विकारी बुद्धि होते हैं द्वापर में। तो मंत्रणा रहने के लिए पवित्र ब्राह्मणों को महामंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? किसकी मत पर चलते हैं? महामंत्री की मत पर चलते हैं। तो जिसकी मत पर चलते हैं वो ही ऊंचा हो गया ना, उसको कहते हैं राजगुरु। तो द्वापर के आदि में किसका राज्य था? विक्रमादित्य तो राजा था, विकारी राजा था। उसने जो मंदिर बनाया वो अपनी अकल से बनाया या उसको मत देने वाला कोई उसका गुरु था? उसका गुरु था, उसी का राज्य हो गया। जैसे आगे चलकर के चंद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त है अपनी अकल से राजा बना या उसको राजा बनाने वाला चाणक्य था? तो चाणक्य चंद्रगुप्त के पांव पड़ता था या चंद्रगुप्त राजा चाणक्य के पांव पड़ता था? कौन किसको माथा झुकाता था? चाणक्य को चंद्रगुप्त माथा झुकाता था। तो बड़ा कौन हुआ? चाणक्य बड़ा हो गया। ऐसे ही द्वापर के आदि में इब्राहिम आया, इब्राहिम अकेली आत्मा आई और उसके पीछे पीछे लाखों की तादाद में इस्लामी आ गए। तो पहले ही जन्म में इस्लाम धर्म की संख्या बढ़ गई या दो चार जन्म लगे होंगे? दुनिया में इस्लाम धर्म की बढ़ोतरी होने के लिए टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो दो चार जन्म लग जाते हैं, उसके बाद उनकी राजाई शुरू होती है। उनको राजाई का वर्षा देने वाली कौन सी आत्मा निमित्त बनती है? यहाँ राजाई के संस्कार बनने वाली कौन सी आत्मा है संगम युग में जो कोई के कंट्रोल में नहीं आती? राम वाली आत्मा। तो वही आत्मा वहां इस्लामियों की राजाई स्थापन करती है।